تفسیر سورة الہمزہ مکی سورت ہے، اس کی 9 آیات اور 1 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 33 ہے، حروف 135۔ پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورت کا موضوع اور مضمون ہے کہ صرف 3 عیب ایسے ہیں کہ ان پر سخت ترین گناہ، یعنی وہ ایسا سخت گناہ ہے 3 عیب کہ ان پر عذاب شدید کی وعید سنائی گئی۔ ذرا تصور تو کریں کہ بڑی شدت کے ساتھ چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف 3 ہیں، اور یہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں؟ جو لوگ مغرور ہوتے ہیں، جو تکبر والے ہوتے ہیں، اور عام طور پر تکبر کون کرتے ہیں؟ جو مالدار ہوتے ہیں۔ تو عرب کے معاشرے میں یہ برائیاں موجود تھیں، اور جو ہے وہ اس گھنونے کردار کو جو عرب کے معاشرے کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیش کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ صرف یہ 3 برائیاں ایسی ہیں کہ ان کا جن کے اندر یہ پائی جاتی ہیں ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہوتاما۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ، وَيْلٌ کا لفظ جو ہے یہ بربادی اور خرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ وَيْلٌ وَيْلٌ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ خاص طور پر وہ لوگ جو یہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو جو ہے وہ ویل کی وادی کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے لِکُلِّ، ہر ایک کے لیے، تباہی ہے ہر ایک کے لیے۔ پھر اس کا ترجمہ تباہی ہلاکت بھی کیا جاتا ہے، یہ تباہی ہے ہر ایک کے لیے۔ کون؟ ہمزتن، اور دوسرا لفظ ہے لمزتن۔ یہ ہمزتن اور لمزتن یہ دونوں فعلتن کے وزن پر ہے، فا عین لام اور پھر اس کے ساتھ تا جوڑ دیجئے، فعلتن۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی لفظ جو ہیں ہم معنی ہیں، دونوں لفظ جو ہیں ہم معنی ہیں، اور بعض اس میں تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم معنی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمز اور لمز اتنے قریب المعنی ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور مثلا کچھ لوگ جب جو ہمز کے معنی بیان کرتے ہیں دوسرے وہی لمز کے معنی بیان کرتے ہیں، جو لمز کے معنی بیان کرتے ہیں وہی ہمز کے معنی بیان کرتے ہیں۔ اصل میں ہمز اور لمز کے معنی ہیں کسی کی جو ہے وہ تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی حقارت بیان کرتا ہے، تو کیسے؟ کہ وہ رو در رو برائی کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ حمز کا لفظ جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کے سامنے رو در رو اس کی برائی کرے، اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ تو حمز کیا ہوا؟ چغلی، اور لمز کیا ہو گیا؟ غیبت۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا الٹ ہے کہ ہمز کے معنی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کرنا، اور لمز کے معنی ہے کہ منہ کے سامنے کرنا۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ ہمز کہتے ہیں آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمز کہتے ہیں زبان سے کرنا۔ تو بہت ہی جیسے قریب المعنی ہے، اور پھر آپ اس کو یوں ہی کہہ سکتی ہیں، عیب نکالنا اور دوسروں پر جو ہے وہ لان تان کرنا، لگائی بجائی، چوٹ لگانا، کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، کسی کے برے برے نام رکھنا، اور کسی کو جو ہے وہ برے القابات سے یاد کرنا۔ اب اس سلسلے میں دیکھیں کہ آپ نے سورت جو ہے وہ الحجرات میں بھی پڑھا تھا نا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور پھر آپ نے جو ہے سورت توبہ میں پڑھا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ پھر اسی طرح آپ نے سورت قلم میں پڑھا، वला तुते कुल्ल हल्लाफ महीन हम्माज मशा इम बिनमीम। वहां पे आपने हम्माज का लफ्ज पढ़ा, मशा इन, मशा कहते हैं चलने वाले को, बड़ा चलने वाला और चलता फिरता, और साथ ही हम्ज की बीमारी में है हम्माज, लान तान गीबत चुगली। अच्छा ये जो ऐब लगाना, गीबत तान करना, कभी जबान से कभी हाथों से, मर्द और औरत सभी करते हैं, पर औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ने एक दफा कहा था ना, कहती हैं कि मैंने एक मर्तबा कहा कि हजरत सफिया का कद छोटा है, और कहती हैं साथ ही मैंने हाथ से इशारा भी किया कि वो ठिकने कद की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा तूने ऐसा कलमा कहा है कि अगर वो समंदर में मिला दिया जाए तो उसे बिगाड़ कर रख दे, उसे भी कड़वा कर दे, इतना तलख गंदा लफ्ज तुमने मुंह से निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कितनी मोहब्बत करते थे ना, लेकिन आप देखें कि आपने गलती किया तो कैसा सख्त मुहासबा किया है, बिल्कुल जो है वो आपको जो है बुरी तरह झिड़का है और समझाया है कि ये जायज नहीं है। इसी तरह एक सहाबी ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह को कहा था ना, वो हबशन के बेटे और हबशा यानी काला रंग, और आपको पता है कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह नो गुलाम थे, मोटे मोटे होंठ थे, स्याह काली रंगत। तो जिस मेरा ख्याल है हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ने कहा था, किसी एक सहाबी ने उनको, हाँ तो उनको भी हजरत अबू जर गफारी को कहा, इनको कहा। अब इस पर क्या हुआ, अगर हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह को कहा गया तो बहरहाल किसी एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को जब ऐसे कहा कि वो हबशन के बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तक तुम्हारे अंदर जाहिलियत बाकी है, बहुत सख्त आप नाराज हुए। तो हम सोच लें कि हम औरतें दिन रात में कितनी दफा दूसरों को इशारों से, आंखों से, कन अखियों से, हाथों से, जबान से क्या क्या कहते हैं, फलां कद का ठिकना है, फलां की आंखें बड़ी चिड़चिड़ी है, क्या कहते हैं चुन्नी है, बहुत ही छोटी सी है, नाक तो ऐसे जैसे पकौड़ा, और बड़ी बगले की चाल चलती है टेढ़ी टेढ़ी, और दुल्हन देख लें, दूल्हा देख लें तो तबसरी हमारे खत्म नहीं होते ना, किसी के लिबास पर, किसी के घर पर, किसी के बच्चों पर क्या ट्रेनिंग की है, क्या तरबियत की है। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सबसे अच्छे बंदे वो हैं कि जब उन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगली को लिए फिरते हैं, दोस्तों के दरमियान बुराई डालते हैं, जो लोग बुराइयों से बरी हैं उन्हें मुसीबत में डालने के लिए तलबगार रहते हैं। तो ये जो हम्ज और लम्ज की बीमारी है ये इतनी शदीद है, ये इतनी बुरी है कि आप सोचें कि वैलुन की जो है ना खबर सुनाई गई, इतना सख्त गुनाह है कि कहा कि ये लोग जो है वो तबाह हो जाएंगे। तो मुझे और आपको अपना अपना मुहासबा करना चाहिए। अच्छा बाज ये जब लड़की लड़के की जब शादी होती है ना, तो बाज लोग जो हैं वो बुराइयां देते हैं गाना गाने की शक्ल में और बुरे बुरे जुमले बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है, और ये जायज नहीं है कि सास को, ससुर को, ददियाल वाल, यानी आमतौर पर शोहर क्या करता है कि अपने वालदैन की और अपने घर वालों की तारीफ करता है, लड़की के जो घर वाले मेके वाले होते हैं ना उसको बुरा भला कहता है, और बच्चों के बारे में भी कि बच्चा कोई भी अगर गलती कर लेना तो कहेगा ये माँ पर गया है, ये तो माँ से सीखी होगी, ये तो लगता है ननिहाल पर चला गया है, और जो अच्छी बात होती है तो फिर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल दादी की तरह लग रहा है या मेरे पर गया है, मतलब ये अजीब इंसान की कमजोरी है ना, और जो क्या है कि हमारी सोसाइटी और हमारे घरों में पाई जाती है। और औरतों की भी आदत है कि मेके की बहुत तारीफ करती हैं और दध्याल की नहीं करती ना, तो अदल करना चाहिए और सच बात करनी चाहिए, हक का साथ देना चाहिए और बुराइयां नहीं करनी चाहिए, ना सास की, ना शौहर की, ना बीवी की, ना दोस्तों की, ना अपने क्लास फेलोज की, क्योंकि अगर कोई बुराई नजर आई है तो उसको जाकर बताएं, इसलिए कि मोमिन क्या है, एक दूसरे का आईना है। आईना क्या करता है, आईने के जब सामने खड़े होते हैं ना जाकर तो आपका चेहरा दिखाता है, ये नहीं कि आप सामने से हट जाएं तो फिर आईना बताता है कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, और जब तक आप सामने रहते हैं चेहरा दिखाता रहता है, आप सामने से हट जाएं बिल्कुल साफ हो जाता है। और जब हमें अपना चेहरा जो नजर आता है फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं ना, कि यहाँ से बाल खराब है, लिपस्टिक नीचे को चली गई है, सब चीजें समझ में आती हैं। इसी तरह हम मोमिन, मोमिन का आईना है, जब सामने खड़े हो तो उसकी गलतियां, उसकी चीजें बतानी चाहिए, जब हम मिले हैं आपस में बातचीत हो, जब मौजूद ना हो तो एक दूसरे की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, उसने सुलूक करना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। वही लुल्ली कुल्ली हुमजा तिल्लु मजा, तो ये दो बुराइयां जो थी ये अरब के लोगों में पाई जाती थी, एक तो मुंह दर मुंह लान तान और दूसरा पीठ पीछे। तीसरी बुराई क्या थी? अल्लज़ी जमा मालं वअद्दा, और कौन है वो शख्स जिसके अंदर हुम्ज और लुम्ज पाया जाता है? वो शख्स जिसने जमा किया माल को। मालन का रूट है नीम वोलाम, माल दौलत को कहते हैं, हर तरह का माल हो सकता है, सोना चांदी भी, डॉलर दिरहम भी, और कपड़े भी, और जूते भी, और बर्तन भी, और साजो सामान भी, और ये वही चीज है अलहाकुमुत तकासुर। और जब तकासुर की कसरत हो जाती है फिर तफाखुर पैदा होता है और फिर इंसान उसी के अंदर रह जाता है। तो माल जमा करता है, जमा माल को जमा किया, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा जमा करना। और कैसे पता चला ज्यादा जमा किया? अददहू, उसको गिन गिन कर रखता है, हर वक्त 99 के हिसाब में रहता है, 99 के चक्कर में। ये नहीं कहता कि सदका खैरात कर दूं, इन्फाक कर दूं, क्या कहता है कि एक और जमा करूं ना तो 100 हो जाएंगे, फिर एक से शुरू करता है, फिर 99 और फिर एक का और चक्कर। वह अददा, और यही वो बात है कि फिर इसको बैंक में जमा करके रखना, फिर जेवर को गिन गिन के रखना, फिर कपड़ों की जो है वो दथियां की दथियां संभाल संभाल के रखना। पिछले दिनों मेरी एक औरत से मुलाकात हुई, कहने लगी कि अभी फिर पाकिस्तान गई हूं और इतने कपड़े ले आई, जो पहली दफा गई थी अभी वो भी नहीं पहने, अटैची खोलने की तौफीक नहीं अभी तक हुई ना। तो आप सोच लें कि इन सारी चीजों का हिसाब देना है। तो क्यों हमारा दिल इतना सख्त हो जाता है कि अल्लाह के रास्ते में अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें हम नहीं देते? हमें अल्लाह के रास्ते में देनी चाहिए। तो तीसरी बीमारी जो है वो मालो दौलत की मोहब्बत है और उसका जमा करना है। और अमीर लोगों की ये खास तौर पर बीमारी होती है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं कि गरीब भी दौलत को जमा कर सकते हैं, अमीर ज्यादा जमा करेगा, गरीब कब जमा करेगा? तो बहरहाल दौलत की हिर्स जो है ना, शोहे नफ्स, ये है असल बात। गरीब हो या अमीर, जो दौलत को जमा करता है और उसके साथ ही इखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। और आमतौर पर जब दौलत होती है तो कहते हैं कि जिसके घर दाने उसके कमले भी से आने, फिर इंसान बड़ा अक्लमंद बन जाता है और दूसरों पर बातें करता है। या सब अन्ना मालहु अखलदा, क्या वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा? खलदा, खालिद, खालिदीन, ये उसी से है हमेशा रहना। और जन्नत में जन्नती हमेशा रहेंगे और जहन्नुम में जहन्नमी हमेशा रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा। तो क्या वो समझता है कि ये माल जो गिन गिन के रखता है, जो जमा करता है, क्या इसके पास हमेशा रहेगा? असल में यहां पे बताया जा रहा है कि माल जो है ना, माल की कसरत या दौलत या दुनिया, इन सबको जवाल है। ये आयत बता रही है कि दुनिया जो है ना, ये हमेशा नहीं रहेगी। सारी चीजें, दुनिया भर भी किसी के पास माल हो तो बहरहाल क्या है कि फिर मौत है जो कि माल को खत्म कर देगी। इंसान खाली हाथ दुनिया से जाता है, एक मुसाफिर था, कुछ देर ठहरा यहां, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ, बात कल की है, महसूस होता है यूं जैसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ। तो एक ही बात है जो हम सबके सामने आती है, और वो क्या है कि हम सबको मरना है, कितना भी माल जमा करके रख ले, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, फिर फरमाया हरगिज नहीं, लयुंबज़न्ना, वो जरूर फेंक दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि लयुंबज़न्ना, यहाँ पे दो ताकीद आई है, एक है लाम और है एक है नून। लाम लामे ताकीद है और नून जो है ये शद के साथ ताकीद के मानी में आया है, नून ताकीद। जरूर व जरूर वो क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। इसका रूट है नून बा जाल, किसी चीज को हकीर समझकर फेंक देना। जैसे कहते हैं ना आई डोंट केयर, जैसे बाज खिलौने ऐसे होते हैं कि बच्चे जब खेल खेल कर थक जाते हैं फेंक देते हैं, कहते हैं अब हमें नहीं चाहिए, पहले उसी खिलौने में बार बार रो रहे थे ना। अब कहा जा रहा है कि ना इसका माल इसके पास रहेगा और हाल क्या होगा, हरगिज नहीं, जरूर ब जरूर वो खुद फेंक दिया जाएगा। कौन? वो जिसके दिल में माल की मोहब्बत थी, जो दौलत को जमा कर करके रखता था, और उसके साथ जो है वो गीबत भी करता था, चुगली भी करता था, दूसरों की बुराइयां बयान करता था, अपने आप को बड़ा समझता था, कभी आंखों से, कभी इशारों से, कभी जबान से, कभी हाथों से। कल्ला लयुंबजन्न फिल हुतमा, जरूर ब जरूर वो फेंक दिया जाएगा, और फेंका भी किस में जाएगा, अल हुतमा में। हुतमा जो है ये दोजख का एक नाम है, और असल में इसका रूट है हा तोए मीम, और इसके मानी होते हैं तोड़ना, कुचल देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए। जहन्नुम का नाम हुतमा इसलिए रखा गया कि जो चीज भी जहन्नुम में फेंकी जाएगी उसकी गहराई में जाएगी, आग में जाएगी, जब अजाब में जाएगी तो वो टूट फूट जाएगी, वो कुचल दी जाएगी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। कहा कि वो, आप सोचे 70 साल के जो है वो अरसे में अगर एक पत्थर जहन्नुम के गहराई में जाकर पहुंचता है, और इंसानों का वजूद होगा जो अल्लाह के नाफरमान है, जहन्नुम में अंदर फेंके जाएंगे तो जहन्नुम उनको तोड़ फोड़ देगी। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम क्या जानो कि वो तोड़ फोड़ देने वाली, वो चकना चूर कर देने वाली क्या है। नारुल्लाहिल मुकदा, आग है अल्लाह की, आग है अल्लाह की। अल-मुकदा, और मुकदा का रूट है वाव काफ दाल, और इसके मानी है जलाना। इसके मानी क्या है, इसके मानी जो है कि आग का जलाना, और आग का लफ्ज जो है आपने पढ़ा है कि आग का जलाना, आग का गर्म करना, इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत से लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, कुरान में 7 लफ्ज है। और वकदा का मतलब है कि आग का भड़क उठना, आग तेजी के साथ जो है वो भड़क रही होगी, और यहाँ पे आग की सिफत है, और वो क्या है, अल-मुकदातु, कि आग जलाने वाली है, वो जला देगी, और जलाई भी किसकी है, नारुल्लाह, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। एक हदीस है कि आग ने अपने रब से शिकायत की कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है, अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में। बस जो सख्त सर्दी होती है ये जहन्नुम का ठंडा सांस है, और निहायत सख्त गर्मी जो है वो जहन्नुम का गर्म सांस है। ये बुखारी की रवायत है, ये जो हम सर्दी और गर्मी बर्दाश्त करते हैं ना, ये जहन्नुम का एक एक सांस है। और आप सोच ले कि पूरी जहन्नुम जिसमें गर्मी भी है सर्दी भी है उसमें लोगों को डाला जाएगा। इसी तरह एक और हदीस में रसूलल्लाह ने फरमाया, जब गर्मी ज्यादा सख्त हो तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के जोश की वजह से है। नारुल्लाहिल मुकदा, अब अल्लाह की भड़काई हुई आग कहां जाएगी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, तत्तलिउ अल्लती नार के लिए है, जहन्नुम और जहन्नुम के सब नाम मुअन्नस हैं, तो वो आग जो है वो जो जहन्नुम है, जहन्नुम की जो आग है, और अल्लाह की भड़काई हुई शिद्दत का एहसास दिलाने के लिए, और दुनिया की एक आग और जहन्नुम की 69 दर्जे, 70 में से सिर्फ एक हिस्सा है जो दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं। कराची में स्टील मिल में विजिट करने का इत्तेफाक हुआ, और आग की बड़ी बड़ी सिले देखकर मैं सोचती रही कि अल्लाह जहन्नुम की आग फिर कैसी होगी, और स्टील मिल के बहुत से जगह ऐसी थी जहां पे हमें वो जाने नहीं दे रहे थे। हमारा पूरा स्टूडेंट का एक ट्रिप था जो हम उसको विजिट कर रहे थे, और मैं बार बार दुआ पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला तो हमें जहन्नुम की आग से बचा लेना। तो ये आग जो है तत्तालेउ, तत्तालेउ का रूट है तोए लाम आइन, और इसके मानी क्या होते हैं, एक चढ़ने के भी हैं और ऊपर पहुंचने के भी हैं, जैसे इत्तिला, बाखबर होना, इत्तिला पाना। तो क्या होता है, सूरज तुलू हो जाता है, चढ़ता है ऊपर ऊपर, फिर चढ़ता चला जाता है, तो तत्तलिउ ये चढ़ेगी, ऊपर पहुंच जाएगी जहन्नुम की आग, अलल अफिदा, और फात की जमा है अफिदा, फा हमजा दाल इसका रूट है, और इसके मानी दिल के हैं, और कल्ब के मानी में ये इस्तेमाल नहीं होता, यानी सदर के अंदर जो कल्ब है, और कल्ब के अंदर जो शऊर और एहसास और जज्बात है, अकायद और अफकार, उनको फात कहा जाता है। फात क्या है, एहसास का मरकज। अब जिनके दिलों के अंदर کیا تھا؟ نیتوں کا فتور، کفر کا عقیدہ، نفاق تھا، ریا تھی، خبیث نیتیں تھیں. اب ان دلوں کو جا کر آگ پکڑ لے گی. ایک اس کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی بلکہ ساروں کو جلا کر رکھے، بلکہ وہ ہر مجرم کے دل تک پہلے پہنچے گی اور ہر ایک کو جیسا اس کا گناہ تھا اس کے مطابق عذاب دے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ کتوں کو جب چھوڑا جاتا ہے پتہ کرنے کے لیے کہ مجرم کون ہے، تو کتا کیا کرتا ہے کہ خوشبو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ ہے مجرم، یہاں پہ ہے شکار جس کو پکڑنا ہے. تو جہنم بھی شکار کرے گی اور مجرم کے دل کو پہلے جا کر پکڑے گی. اور جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب دل ہی بجھ جائے، جب دل ہی بند ہو جائے، جب دل ہی جل جائے، تو آپ سوچ لیں باقی پھر جسم کا کیا حال ہوگا. مفسرین کہتے ہیں دلوں تک پہنچے گی، کیونکہ دلوں کے اندر کفر، نفاق، شرک پایا جاتا ہے. انہا علیہم موصدا، بے شک پھر ان کے اوپر اس کو بند کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں انہا، بے شک یہ جو آگ ہے نا ان مجرموں پر، علیہم ان مجرموں پر، پھر کیا کیا جائے گا؟ موصدا، اس کا روٹ ہے بہت سواد دال اور اس کے معنی ہیں بند کرنا. اب آپ دیکھیں کہ بند کرنے کے لیے قرآن میں چار لفظ آئے ہیں اور وسدا دوسرا درجہ ہے. اس طرح سے بند کرنا کہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے. جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے نا، آپ پریشر کوکر میں کیا کرتی ہیں؟ سیلڈ کر دیتی ہیں اس کو، اور ایسے بند ہو جاتا ہے کہ بھاپ بھی باہر نہیں آ سکتی، سٹیم باہر نہیں آ سکتی. کھڑکی یا دروازہ یا روشن دان اس طرح سے بند کرنا کہ اس میں ذرا سی روشنی بھی نہ آئے، ذرا سی ہوا بھی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں وسادہ. تو اب جو ہے ایک طرف جو ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم گہری ہے، اللہ کی بھڑکائی بھی ہے، دوسرا ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. اور آپ دیکھیں، آپ سوچیں تو صحیح کہ کیسا شدید عذاب ہے، کیسا سخت عذاب ہے. ویلن، صرف تین برائیاں، تین گناہ، ہومز، لومز، مال کا جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، یہ سب دنیا کی محبت ہے. دوسروں کی برائیاں بھی انسان تب کرتا ہے جب اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، فخر اور غرور. اور مال بھی اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کو اور اللہ کو بھول جاتا ہے، نہ زکات دیتا ہے نہ صدقات دیتا ہے. فی امد ممددہ، اب آپ دیکھیں کہ جب آگ کو اس میں بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اندر سے سوراخ بھی نہیں ہوگا، مزید دو باتیں کہیں. ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے اوپر، اونچے اونچے ستون، امد ممددہ. اور یہ کیا ہے کہ جیسے کوئی بھی اس میں سے اب نکل نہیں سکتا. دوسرے اس کے معنی یہ بتائے گئے کہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، یہ بھی ایک سزا کی شکل ہوگی. تیسرے ایک معنی بتائے گئے کہ اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے کہ جس سے لوگ دوڑ نہیں سکتے اور جس سے لوگ بھاگ نہیں سکتے. اور یہ وقت جو ہے یہ بڑا ہی شدید وقت ہوگا، بڑا ہی سخت وقت ہوگا کہ مجرم جو ہیں جہنم کے اندر ہیں، جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے گئے ہیں، لوہے کی میخوں کی طرح کے ستون ہیں جن سے ان کو باندھ دیا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بیڑیاں ہیں، توک ہے جن سے ان کو باندھ دیا گیا ہے، لمبی لمبی بیڑیاں اور توک ہیں. اب مجرم کہیں جا نہیں سکتے. فی امد ممددہ، یہ تھی سورت الحمدہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے افعال اور کردار کی فکر کرنی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالی سے ڈرنا ہے اور پھر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے نیک اور متقی تھے اور زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی کے اوپر پاؤں آ گیا. اس نے کہا اندھے ہو گئے ہو، آپ کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو ذرا لاٹھی سے ٹھیک کر دوں. اس نے امیر المومنین کو ایسے کہا، کہا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو کہ میری غلطی ہے کہ میرا پاؤں اس کے اوپر آیا ہے. اور آپ نے، اس نے برا بھلا کہا کہ اندھے ہو گئے ہو، آپ نے کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا کہ آپ کچھ بولے بھی نہیں. کہا کہ جو ہے وہ تقویٰ نے میری زبان کو لگام دے دی. تو اللہ کا ڈر کیا کرتا ہے؟ پھر حمز اور لمز پر نہیں آمادہ کرتا، پھر انسان ڈرتا ہے، پھر کسی کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالتا۔ تو جہنم سے بچنا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اور دوسرا کیا ہے کہ مال جو ہے نا اس سے ایسے محبت کرنی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں مال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور وہی مال کام آئے گا جو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اور یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم حطامہ سے بچ جائیں اور ہم نار اللہ الموقدہ سے بچ جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔